آج ہم یہاں پہ اسکان کے شری شری رادھا گوکلانند مندر میں شری گووردھن پوجا کا پاون اتسو منا رہے ہیں. حالانکہ تیتھی تو بیت چکی, تیتھی تو شکروار کو تھی, پرنتو رویوار کو زیادہ لوگ آ پائیں گے اور بھگوت کیرتن اور بھگوت پروچن, بھگوان کا درشن, گووردھن پوجا اتیادی یہ ساری چیزوں کا لابھ اٹھا پائیں گے, اس لیے یہ اتسو آج منایا جا رہا ہے. گووردھن پوجا یہ گوڑیوں ویشنووں کے لیے بہت ہی مہتوپورن اتسو ہے, کیونکہ گووردھن ویشنووں کے لیے اتی پریہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گووردھن بھگوان شری کرشن کے لیے اتی پریہ ہے. گووردھن نہ تو کیول بھگوان کے اوتار ہیں لیکن بھگوان کے داس بھی. پچھلے رویوار کو ہم رادھا کنڈ نامک ستھان کے مہاتمے کے بارے میں چرچا کر رہے تھے اور اس سندربھ میں یہ بتا رہے تھے کہ مہان آچاریہ شری روپ گوسوامی وشلیشن کرتے ہیں کہ اس بھوتک جگت سے شریشٹھ ہے ویکنٹھ, کیونکہ یہ بھوتک جگت دکھوں سے پورن ہے, اس لیے اسے کنٹھ کہتے ہیں. پرنتو بھگوان کا دھام جسے ویکنٹھ کہتے ہیں وہاں کوئی کنٹھ نہیں, کوئی کشٹ چنتا اتیادی نہیں ہے. اور ویکنٹھ سے بھی شریشٹھ ہے بھگوان کا دھام متھرا, کیونکہ وہاں بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا. متھرا سے بھی شریشٹھ ہے ورنداون. ورنداون کے دوادش ونوں میں, بارہ ونوں میں, جیسے کہ لوہ ون, کمد ون, کامیا ون, بھنڈیرا ون, بھدر ون اتیادی, ان سب میں بھگوان شری کرشن نے اپنے بھکتوں کے سنگ کئی مدھر لیلائیں کیے. اور ورنداون سے بھی ادھک مہتوپورن ہے گووردھن, کیونکہ گووردھن کو بھگوان شری کرشن نے اپنے نجی کر کملوں سے اٹھایا اور گووردھن پہ بھگوان نے نہ کیول سکھاؤں کے ساتھ میں, گوپوں کے ساتھ میں, لیکن گوپیوں کے ساتھ میں بھی بہت سارے لیلائیں کیے. اور گووردھن کے سے زیادہ مہتوپورن ہے رادھا کنڈ اور شام کنڈ, خاص کر کے رادھا کنڈ. ویسے رادھا کنڈ گووردھن کے تٹ پہ ہے اور گووردھن کے پریکرما کے پتھ میں پڑتا ہے, اس لیے گووردھن ویشنووں کے لیے بہت مہتوپورن مانا جاتا ہے. ویسے گووردھن کے بارے میں شریمد بھاگوتم میں بھی بہت وستار میں الیکھ ہے. جب بھگوان شری کرشن ورنداون میں لیلا کرتے تھے تو وہاں وہ گووردھن کے پاس جایا کرتے تھے اپنے گایوں کو لے کر, اور وہاں پر نانا پرکار کی لیلا کرتے تھے. جب کرشن بھگوان بلرام جی کے ساتھ میں, ان کے گوپوں کے ساتھ میں ون میں پرستھان کرنے جا رہے تھے تو اس سمے گوپیاں برنداون کی آپس میں بولنے لگیں, ہنتال مدربلا ہریداس وریو ید رام کرشن چرن سپرش پرمود مانم تنوتی سہگو گنیوستور پانی سویو سکندر کند مول. ایک گوپی دوسرے سے کہہ رہی ہے, ہنتا वो कह रहे थोड़ा शोक कर रही है, दुख कर रही है। हंता अयम अद्री, अद्री मतलब पहाड़, मतलब गोवर्धन, क्योंकि वृंदावन में तो और कोई पहाड़ नहीं है, सारे ब्रह्मांड में से सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ यही है गोवर्धन। जिस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण तालाब सरोवर है राधा कुंड, उसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है गोवर्धन। तो गोपियां कृष्ण और बलराम अपने गोपों के साथ में गवों को लेकर गोवर्धन की ओर चले जा रहे हैं। तो गोपियां बोल रही हैं, अरे देखो ये जो अद्री है हंता, अयम अद्रीर अबला, अबला मतलब एक स्त्री को कहा जाता है। हे सखी, हे गोपी, देखो ये जो गोवर्धन पर्वत है इसका कितना सौभाग्य है, ये तो हरिदास वर्य है। हंतायम अद्री रबला हरिदास वर्यो, वर्य मतलब श्रेष्ठ, हरिदासों में से श्रेष्ठ है ये। श्रीमद् भागवत में केवल तीन लोगों को हरिदास कहा गया है। वैसे तो भगवान के कितने सारे भक्त हैं और हर एक भक्त हरिदास कहलाता है, हरि का दास, परंतु केवल तीन भक्तों को हरिदास कह के संबोधित किया गया है। उनमें से एक हैं युधिष्ठिर महाराज, पांडव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे। दूसरे थे उद्धव, जो कि द्वारका में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, उनके सहायक थे, उनके उपदेशक थे और उनके परम भक्त भी थे। और तीसरे हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रूप है, दास रूप में। भगवान अपनी ही सेवा करने के लिए, निजी की, स्वयं की सेवा करने के लिए इस पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे। तो गोपियां कहती हैं, हंतायम अद्रिर अबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। राम अर्थात बलराम और कृष्ण चरण स्पर्श, ये दोनों राम और कृष्ण, इनके चरण कमलों का स्पर्श ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर हुआ है, इसलिए प्रमोदः, बिल्कुल हर्षित हो उठा है गोवर्धन। इसकी खुशी की, आनंद की सीमा नहीं लग रही है, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने चरण कमलों को गोवर्धन के ऊपर रखा है। और इतना ही नहीं, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, जब भगवान श्री कृष्ण इसके ऊपर चलते हैं, मानम तनोति, मानो कि गोवर्धन उनको नमस्कार कर रहे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब कोई हम ऐसे अनुभव से गुजरते हैं जो कि शायद बहुत भयानक हो या तो बहुत आनंद प्रदायक हो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत के सारे घास वृक्ष वो सब हर्ष के मारे, आनंद के मारे वो प्रणाम कर रहे हैं हमारे भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके चरणों का स्पर्श किया है गोवर्धन के ऊपर। सह गो गणयोस्तयोर्यत, राम और कृष्ण अकेले नहीं जा रहे हैं, गवों के साथ में जा रहे हैं और ग्वाल बाल मित्रों के साथ में जा रहे हैं। और गोपियां कह रही हैं कि देखो ये गोवर्धन का कितना भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी तरह से वो सेवा कर पा रहा है। कैसे सेवा कर पा रहा है? पाणीय सुयवस कंदर कंद मूलये, पाणीय, इसके कई झरे बहते हैं यहां पर, शीतल शुद्ध पानी लेकर, जल लेकर, और उस शीतल जल का पान करके भगवान श्री कृष्ण, राम, बलराम, अपने ग्वाल बाल मित्र और गौवें सारे अपनी प्यास बुझाते हैं, थकावट को मिटाते हैं। और इतना ही नहीं, पाणीय सुयवस, बिल्कुल मुलायम हरी भरी घास है वहां पर, जो चबाने के लिए गायों के लिए बड़ा उपयुक्त है, स्वादिष्ट है, मीठा है, और गाय वहां चबाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। اور وہ گھاس چبانے سے گائے اتنے خوش اور اتنے تندرست ہو جاتے ہیں کہ ان کا دودھ بھی بڑا سوادشت ہو جاتا ہے. اس لیے گائے کو ادھر ادھر فیکٹری کے اتپادن نہیں کھلانے چاہیے بلکہ ہری بھری گھاس کھلانے چاہیے. اگر ہم بھی فیکٹری کا مال کھائیں گے تو ہم تندرست نہیں رہ سکتے. ہمیں انن چاہیے اچھا, کھیت کا اتپادن چاہیے. تو اسی پرکار سے گووردھن یہ ہری بھری گھاس بھی گایوں کو پردان کر رہی ہے. کندر یہاں گفے بھی ہیں, گفوں میں جا کر کبھی کبھی کرشن بھگوان اپنے گوال بال متروں کے ساتھ میں کھیل کریڑا کرتے ہیں. کبھی کبھی چور پولیس کھیلتے ہیں, کبھی کبھی پکڑا پکڑی کھیلتے ہیں, نانا پرکار کے کھیل جیسے کہ سادھارن یہ سنسار کے بچے کھیلتے ہیں, ویسے بھگوان شری کرشن گووردھن پروت کے اندر جو گفے ہیں کندر ان میں کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جب کڑی دھوپ آ جاتی ہے تو بھگوان شری کرشن ان گفاؤں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ چھایا کا آنند لیتے ہیں. اور پھر کند مول ہے, ہی گووردھن میں اتنے سارے کند مول ہیں. وہاں پہ گووردھن پہ نہ ورنداون میں کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ کی کوئی آوشیکتا نہیں تھی. ایسا نہیں کہ جب سڑک میں جا رہے ہیں بھوک لگ گئی کسی ہوٹل میں جا کے ہم نے کھا لیا, نہیں. کند مول ہے, بہت سارے وہاں اچھے اچھے ورکش تھے, بہت میٹھے میٹھے پھل وہاں آتے تھے, نانا پرکار کے پھل کھاتے تھے. کند مول بھی اتنے سوادشت تھے کھانے کے لیے, بس اپنی بھوک مٹاتے تھے ان چیزوں سے. اور وہاں جو جھرنے آیا کرتی تھی ان کا شیتل جل لے کے پیاس مٹاتے تھے, بجھاتے تھے, اور کھیل کریڑا کرتے تھے. ادھر گائے اپنا کام کرتی تھی, گائے چرتے چرتے ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی, کبھی کبھی کرشن بھگوان کے لیلا میں بھی بھاگ لیتے تھے. تو اس پرکار سے گووردھن اتنا بھاگیشالی ہے کہ انیک پرکار سے بھگوان شری کرشن کی سیوا کر رہا ہے. تو گوپیاں ایک درشتی سے شوک کر رہی ہیں, کہہ لیجئے کہ ان کے من میں یہ بھاونا بھی ہو رہی ہے کہ کاش ہم بھی گووردھن کی طرح بھگوان شری کرشن کی سیوا کر پائی ہوتی, لیکن ہم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ گوپیاں بھی گووردھن کی ستوتی اس پرکار سے کر رہے ہیں. تو یہ ہے گووردھن, سب سے مہتوپورن پروت. یہاں پہ بھگوان نے کون کون سی سندر سندر لیلائیں کی ہیں, اور ساتھ ساتھ میں گووردھن بھگوان سے ابھن بھی ہے, بھگوان کا اوتار مانا جاتا ہے. اس لیے گووردھن پروت کے اوپر جو پتھر ہیں وہ سادھارن پتھر نہیں مانتے ہم ان کو, وہ سوئم بھگوان کے روپ ہیں, اوتار ہیں. اور یہ پرتھا ہے کہ کسی کو گووردھن پروت سے پتھر اٹھا کے نہیں لانا چاہیے. اگر کسی برجباسی نے سوئم دان میں ہمیں گووردھن شیلا دے دی تو ہم اسے سویکار کر سکتے ہیں, لیکن بنا کسی برجباسی کے بھینٹ کیے بغیر ہمیں گووردھن شیلا یہیں نہیں لانی چاہیے. چیتنیہ مہاپربھو جب برنداون گئے تھے برج بھومی میں تو گووردھن کے اوپر انہوں نے اپنے چرن کمل رکھے نہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بھگوان شری کرشن کا روپ ہے. گووردھن میں اور شری کرشن میں کوئی انتر نہیں ہے. جس پرکار سے بھگوان کے پستک کے اوپر, بھگوان کی مورتی کے اوپر یا کسی بھی ایک شدھ وستو کے اوپر ہم پیر نہیں رکھتے ہیں, تو بھلا ہم گووردھن پروت کے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں. اس لیے چیتنیہ مہاپربھو نے اپنے بھکتوں کو منع کیا کہ کبھی بھی گووردھن پروت کو سادھارن پروت سمجھ کر اس کے اوپر چڑھنا نہیں. گائے بھلے چڑھیں چرنے کے لیے, اور وہ تو برجواسی ہے, کبھی کبھی برجواسی چڑھ بھی جاتے ہیں, لیکن برجواسیوں کے بیچ میں اور بھگوان کے بیچ میں جو پریم کا سمبندھ ہے اس کی نقل ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں دور سے ہی پرنام کرنا ہے گووردھن کو. اور گووردھن پوجا کے تتھی پر لاکھوں لاکھوں لوگ گووردھن جی کی پرکرما میں جاتے ہیں. قریب قریب 21 کلومیٹر کی پرکرما ہے, اور لوگ الگ الگ طرح سے پرکرما کرتے ہیں. کوئی چل کے کرتے ہیں, اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دنڈوت پرکرما کرتے ہیں. دنڈوت پرکرما کا مطلب ہے کہ پرکرما پتھ پہ آنے کے بعد میں وہ دنڈوت کرتے ہیں, اور جہاں پہ ان کی انگلیاں ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, फिर से आगे दंडवत करते हैं। तो जिस जगह उनकी उंगलियों ने स्पर्श किया है मार्ग का, फिर वहां आगे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर से दंडवत करते हैं। ऐसे सारे 21 के 21 किलोमीटर दंडवत करके वो परिक्रमा करते हैं। लेकिन फिर भी हजारों हजारों लोग जो आते हैं वहां पर, हर एक के हृदय में भक्ति भावना और श्रद्धा रहती है। और कार्तिक महीने में खास करके आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। तो गोवर्धन पूजा के पीछे इतिहास क्या है, इसका वर्णन बड़े सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में करते हैं। वृंदावन में एक बार ऐसे हुआ, जब श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी तैयारी गांव में चल रही है। सारे गोपगण, नंद महाराज, उपनंद इत्यादि एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और कृष्ण को सुनाई पड़ा कि ये इंद्रदेव के लिए यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। तो कृष्ण भगवान आए अपने पिता नंद महाराज के पास और कहने लगे कि हे पिताजी, ये जो विशाल यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, किसके संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, और इसको कैसे किया जाएगा, और इसको करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे प्रश्न किए तो नंद महाराज ने अपने मन ही मन में सोचा, ये तो 7 साल का बच्चा है, ये सब बातें कैसे समझेगा। नंद महाराज ने कुछ बात कही नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, क्योंकि स्वयं वो सबके हृदय में हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो उन्होंने नंद महाराज से कहा कि हे पिताजी, जो साधु पुरुष होते हैं वो किसी भी बात को गोपनीय या गुप्त नहीं रखते हैं, और नहीं वो किसी को अपना शत्रु और मित्र मानते हैं, क्योंकि वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरी बहुत तीव्र इच्छा है ये जानने के लिए कि ये आप सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और अगर आप ये भी समझें कि मैं कोई उदासीन व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक मित्र हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका पुत्र हूं, तो मुझसे फिर ऐसे रहस्य रखने नहीं चाहिए, खोल के मुझे बताइए। तो नंद महाराज ने कहा ठीक है। तो नंद महाराज कहने लगे कि देखो, हम लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं। वर्षा का जो काम है सारे ब्रह्मांड में, वो इंद्रदेव चलाते हैं, उनका डिपार्टमेंट है। और ये बादल जो हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, स्वयं इंद्रदेव के रूप हैं। ये बादल बारिश बरसाते हैं, और जब वर्षा होती है तो हमारे खेत हरे भरे हो जाते हैं, अनाज मिलता है, उस अनाज से हम हमारा पेट भरते हैं, हमारा जीवन यापन करते हैं। तो हमारा पालन पोषण अनाज से होता है, अनाज वर्षा से आता है, वर्षा बादल से आते हैं, बादल इंद्रदेव के निरीक्षण में चलते हैं, और इसलिए हम इंद्रदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी करते हैं, अन्नाद भवंति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। वो कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न के ऊपर जीते हैं, और अनाज अन्नाद भवंति पर्जन्यो, अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, जब हम यज्ञ करते हैं तो फिर वर्षा होती है। और जब शास्त्रों के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने अपने निहित कार्य करता है तो फिर वो यज्ञ कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अंततः कितने भी बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री हम समाज में बनाएं, आखिर में हमें खाना क्या है? हमें खाना केवल अनाज है, फल और अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि। कारखाने के नट बोल्ट तो हम नहीं खा सकते। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम धरती के उत्पादन के ऊपर निर्भर हैं। तो नंद महाराज कृष्ण से कहने लगे, इसलिए हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। और हे कृष्ण, ये मत समझो कि हम अकेले कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं। और वैसे ये एक साधारण कोई प्रथा नहीं है, अनादिकाल से चलती आई एक लोक परंपरा है, प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था उनको कि हे पिताजी, कृपया ये बताइए कि ये जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं, ये शास्त्रों में बताया हुआ है या बस किसी के मनमाने ढंग से किसी ने शुरू कर दी और एक लोक परंपरा चलती आई ऐसे? क्या ऐसे है कि इसका कोई प्रमाण भी है शास्त्रों में? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हम देखते हैं कि समाज में इतने सारे प्रथाएं होती हैं, कोई कहता है बकरी काटना हमारा परंपरा है, और कोई ये कहता है, वो को नाना प्रकार की चीजें लोग कहते हैं। लेकिन हमें यह देखना चाहिए क्या इन प्रथाओं का प्रमाण कोई शास्त्रों में है, और खास करके श्रीमद् भागवत कलयुग के लिए शास्त्र है। श्रीमद् भागवत तो भक्ति का मार्ग है, सात्विक जीवन बिताने वालों का मार्ग है। इसलिए इंद्रदेव जो कि ये वर्षा देते हैं, प्रदान करते हैं, हमें उनको पूजना चाहिए। हे कृष्ण, उनकी पूजा करने से वो संतुष्ट होंगे और संतुष्ट होकर हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये यज्ञ हम संपन्न करने जा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना तो वो कहने लगे, हे पिताजी, देखिए ये सारे ब्रह्मांड में प्रधान तो केवल कर्म है। कर्म से हमारा जन्म हुआ है, कर्म से हमारी मृत्यु होगी, कर्म की वजह से ही हमारे जीवन में सुख दुख भय और सुरक्षा निर्माण होता है। इसलिए जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं। तो इसमें इंद्रदेव की क्या भूमिका है? तो नंद महाराज और अन्य गोप कहने लगे कि देखो कि अगर हम केवल कर्म करेंगे और देवता संतुष्ट नहीं होंगे हमारे ऊपर, तो कर्मों के फल हमें कैसे मिलेंगे? तो कृष्ण भगवान बोलने लगे कि ठीक है, अगर भी आप मानते हो कि कोई नियंत्रण करता होना चाहिए, मैं कहता हूं कि नियंत्रण करता का काम तब शुरू होगा जब कर्म करने वाले कोई हैं। अगर कर्म कोई करेगा ही नहीं तो कर्म का फल देने वाला का क्या मतलब है? आजकल के हिसाब से देखा जाए, एक उदाहरण दृष्टांत दिया जाए, अगर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कोई नहीं है तो अध्यापक करेगा क्या? अध्यापक किसको सिखाएगा, क्या करेगा? तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एक मिथ्या दर्शन शास्त्र प्रस्तुत कर रहे हैं, झूठा दर्शन दे रहे हैं जानबूझकर। और वो कह रहे हैं कि अगर कर्म करने वाले लोग कोई रहे नहीं, तो कोई भगवान भी अगर है कर्मों का फल देने वाला, तो कौन से कर्मों का फल देगा वो, जब कर्म ही कोई नहीं कर रहे हैं? इसलिए भगवान अगर हैं भी तो वो भी कर्मों के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए वो भगवान भी कर्म के अधीन हैं। इसको कर्म मीमांस दर्शन कहते हैं। ये एक नास्तिकवाद दर्शन है। इसमें लोग ये कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग जो ऐसा वाद करते हैं, ऐसा दर्शन प्रस्तुत करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि कर्म के कानून को, कायदे को किसी ने तो बनाया है। कर्म के कानून तो यूं ही तो उत्पन्न नहीं हुए, और इसलिए जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मों का फल प्रदान करने वाला एक व्यक्ति रहता है जिसने कि कानून बनाया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर यह झूठा दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे। तो क्योंकि श्री कृष्ण इस दर्शन को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि बुद्ध देव है, बुद्ध देव भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, लेकिन जिस दर्शन को उन्होंने प्रस्तुत किया, जो वैदिक शास्त्रों के अनुयायी हैं वो उसको मानते नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी एक नास्तिक धर्म है। केवल इतना अंतर है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे झूठे शास्त्र क्यों प्रस्तुत किए? केवल इसलिए कि वो नंद महाराज को बताना चाहते थे कि आप इंद्रदेव जैसे देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं। देवता तो सब मेरे दास हैं, ये सारे देवता जब वरदान प्रदान करते हैं मनुष्य जीवन मनुष्य लोकों में तो केवल मेरी शक्ति के द्वारा प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है ये सब करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिया गीता का तो उन्होंने अर्जुन से कहा था अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिनकी कम बुद्धि है वही केवल देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो भगवान जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास चले आते हैं। तो उसी बात को यहां पर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। मन ही मन श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये तो मेरे नित्य पार्षद हैं, मेरे भक्त हैं, और मैं यहां सामने खड़ा हूं और वो इंद्रदेव जैसे साधारण जीव की उपासना करने जा रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि हे पिताजी, वैसे भी जो हमारा स्वभाव रहता है बद्ध स्वभाव, वही परम होता है। हमारे स्वभाव के अनुसार हम कार्य करते हैं, पशु अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो ये जो अपना स्वभाव है वही श्रेष्ठ है। और देवी देवता जैसे कि इंद्र इत्यादि, कर्म के कानून उनके ऊपर तो लागू होते हैं, तो ये सब जब है तो इंद्रदेव की कोई भूमिका हमारे जीवन में नहीं है। और हे पिताजी, हम तो ग्वाल हैं, हम तो गोप हैं, हमारा काम है गायों को चराना, गो रक्षा करना। ब्राह्मणों का काम होता है वेदों का पाठ करना, पठन करना। क्षत्रियों का काम होता है प्रजा का संरक्षण करना। वैश्यों का काम होता है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। और शूद्रों का काम होता है अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार से हे नंद महाराज, हे पिताजी, इंद्रदेव भी वैसे हमारे स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, इंद्रदेव भी अपने स्वभाव से बद्ध हैं, इसलिए इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की पूजा करने से गोवर्धन संतुष्ट हो जाएंगे। जब हमारा पालन पोषण कोई कर रहा है और हम उपासना किसी और की करें तो यह कैसे संभव है? यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। गोवर्धन हमें सब कुछ प्रदान करता है, हमारे गायों के लिए चारा, हमारे लिए कंदमूल, जल इत्यादि, तो हमारा पालन पोषण करने वाला तो गोवर्धन है। तो आइए हम सब गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो नंद महाराज ने कहा कि ठीक है, पहले इंद्रदेव की पूजा कर लेते हैं, बाद में गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब समय नहीं है, अभी करना है गोवर्धन की पूजा। तो जो भी आपके पास सामग्री है इसको इकट्ठा कीजिए और गोवर्धन जी को अर्पण कीजिए, गायों को अर्पण कीजिए, ब्राह्मणों को अर्पण कीजिए, और जो भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन है वो बनाए जाएं, नाना प्रकार के पकवान, सब्जियां, नाना प्रकार के फल से बने हुए चीजें, नाना प्रकार के चावल से, गेहूं से बने हुए चीजें, नाना प्रकार की मिठाइयां, दूध, लस्सी इत्यादि, ऐसे सैकड़ों आइटम बनाए जाएं और गोवर्धन जी को भोग चढ़ाया जाए। और हे पिता, मेरी इच्छा है कि सभी को गोवर्धन जी का प्रसाद खिलाना चाहिए, उसके बाद में नीच से नीच लोगों का, यहां तक चांडालों का भी। चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे चांडालों को भी खिलाइए, कुत्तों को भी खिलाइए, ब्राह्मणों को भी खिलाइए, सभी को खिलाइए, गोवर्धन जी की कृपा सब जगह फैले। और
बात नहीं है पिता, सब ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए, उनको दान दीजिए, भेंट दीजिए और गायों को घास खिलाकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। आज ये सब चीजें हम करने वाले हैं, तो जाइए मत। और फिर आप सब अच्छी तरह से गोवर्धन को चढ़ाए हुआ भोग प्रसाद रूप में आराम से पेट भर से आप उसको ग्रहण कीजिए। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो बहुत अच्छा होगा, गाय प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, गोवर्धन प्रसन्न होंगे, मैं भी प्रसन्न होऊंगा। तो नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों ने सोचा, आपस में सलाह मशवरा किया और सोचने लगे चलो ये करना चाहिए। अभी साधारणतः जो वृंदावन के लोग थे भोले भाले सीधे साधे थे, वो कोई दर्शन शास्त्र नहीं समझते थे। जो भी कृष्ण भगवान ने कर्म मीमांसा और ये सब सारे दर्शन शास्त्र कहे, ज्यादातर जो भी गोप उधर उपस्थित थे उनको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। केवल नंद महाराज थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे कृष्ण के पास, लेकिन गोप गणों ने कृष्ण की बात मानी क्यों? क्योंकि कभी भी वो कृष्ण की बात को इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि कृष्ण से इतना वो प्रेम करते थे, अपने बच्चों से अधिक कृष्ण से प्रेम करते थे। तो जो भी कृष्ण कहते थे हां में हां मिला लेते थे। और वैसे भी अगर सेल्समैन ये दुनिया में हो ना हो तो कृष्ण की तरह, जो उनको बताना है दूसरों को समझाना है इतने मीठे ढंग से बोलते थे, सभी को समझा देते थे। तो ब्रजवासी भी समझ गए ठीक है चलो अब कृष्ण कह रहे हैं तो हम भी गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। और सारे ब्रज से नाना प्रकार के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान वहां लाए गए और गोवर्धन जी को भोग चढ़ाया गया। लाखों लाखों वहां पदार्थ थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर लीला की, क्योंकि वो अपने भक्तों से ब्रजवासियों से बताना चाहते थे कि देखो मुझमें और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है, गोवर्धन भी मेरा अवतार है। हालांकि वृंदावन के निवासी ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, वो तो कृष्ण को अपना बच्चा समझते थे, लाड़ प्यार करते थे कृष्ण से, अपने वात्सल्य प्रेम के योग्य समझते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक विशाल रूप धारण किया, इतना विशाल कि सब लोग देखकर घबरा गए। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो गोवर्धन का विशाल रूप, आपने जो भोग चढ़ाया है उसे ग्रहण करने के लिए गोवर्धन ने रूप धारण किया है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस रूप को प्रणाम किया। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रणाम किया, क्योंकि वो विशाल रूप भी उन्हीं का था। और उस समय गोवर्धन के इस विशाल रूप में भोग खाना आरंभ किया, भोग स्वीकार करते गए और थोड़े क्षणों में सब समाप्त हो गया, लेकिन गोवर्धन की भूख मिटी नहीं। तो गोवर्धन कहने लगा अणियोर अणियोर, मतलब ब्रज भाषा में और लाओ और लाओ। तो सब घबरा गए उस आवाज को सुनकर, तो सभी लोग इधर उधर भागे और व्यंजन लाए वहां, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन, और बहुत कुछ भोग दिखाया गोवर्धन को। गोवर्धन ने वो भी खा लिए अणियोर अणियोर। तो गोवर्धन की भूख की कोई सीमा ही नहीं, खाते गए खाते गए खाते गए। और ब्रजवासी चिंतित होने लगे अब क्या होगा, लेकिन फिर गोवर्धन संतुष्ट हुए। और फिर बहुत सारा प्रसाद बचा था, गोवर्धन ने छोड़ दिया अवशेष, और ब्रजवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया, गायों को बैलों को गाय के बछड़ों को सामने रख के गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। और आगे ब्राह्मण चल रहे थे, मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे बड़े सुरीली आवाज में, और पीछे गोपगणों के पीछे गोपियां बैलगाड़ी में बैठकर सुअलंकृत रूप में बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए वो भी कृष्ण का गुणगान करते आ रहे थे, वो भी बड़े मधुर सुरीले ढंग से बोल रहे थे। तो एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, इतना रम्य वातावरण था वहां पर, सभी लोग आनंद के सागर में डूबे जा रहे थे, किसी को दो कोई और चिंता ही नहीं थी, सभी लोग भाव विभोर हो गए उधर और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने लगे। और दिन समाप्त हो गया। इस प्रकार से सभी लोग, पशु प्राणी, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, सभी लोग संतुष्ट हो गए, अपने अपने घर वापस गांव में ब्रज में सभी लोग चले गए। हमने कहा कि सभी लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन हमने गलती की। एक व्यक्ति थे जो संतुष्ट नहीं हुए थे, उनका क्या नाम? इंद्र। और वो ब्रज में नहीं बैठे थे, दूर अपने इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में बैठे थे, और वो देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे लिए इतना बड़ा यज्ञ हुआ होने जा रहा था, ये बच्चा यहां पर आया और इसने सब कुछ मजा किरकिरा कर दिया, मेरे लिए इतने सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग चढ़ने वाले थे, अब क्या होगा। तो इंद्रदेव को आया बड़ा क्रोध। देखिए, चाहे कोई स्वर्ग का राजा भी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी क्षण हम माया के प्रभाव में पड़ सकते हैं। इंद्रदेव तो केवल भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, जैसे हम सब भगवान के अंश हैं, देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान गीता में घोषणा करते हैं। परंतु कभी कभी देवताओं के हृदय में घमंड आ जाता है, और घमंड जब आ जाता है तो हम सत्य को भूल जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये जो घमंड है, ये भी एक प्रकार की नशा है। ये नशा किससे आ जाती है? ये धन से, शक्ति से इत्यादि। श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधीर एधमान मध कुमान नैवाहति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, जिसके पास ऊंचा जन्म है, किसी ऊंचे कोटि के परिवार में जन्म लिया है, या किसी के पास ऐश्वर्य है, बहुत सारा पैसा है, धन है, या श्री, बहुत सारा सौंदर्य है, या तो फिर वो बहुत विद्वान है, श्रुति, तो ये चार चीजें क्या हैं? ये चार चीजें जिसके पास हैं, वो उसको नशा चढ़ जाता है। एधमानम मदह पुमान। किसी के पास ज्यादा धन हो, ज्यादा सौंदर्य हो, ज्यादा विद्वत्ता हो, ऊंचा जन्म हो, तो उसको घमंड हो जाता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितनी शक्ति है, कितना सौंदर्य है। एधमानम मदह पुमान, मानो कि जैसे व्यक्ति ने शराब पीकर उन्मत्त हो गया है। और इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं, नैवार्हति अभिधातुम वै, वो आपको, आपके पास नहीं आ सकते हैं, आपको पुकार नहीं सकते हैं भक्ति भाव से। केवल जिसके हृदय में घमंड की नशा नीचे उतर गई है, वही व्यक्ति आपको जान सकता है। त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन मतलब कौन? मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, वो व्यक्ति जिसने स्वतंत्र तरह से योजनाओं को बनाना छोड़ दिया है। मैं आज, मेरे पास इतने पैसे हैं, अभी इतना कमाऊंगा, कल मेरे पास उतने हो जाएंगे, ईश्वरो हम अहम भोगी भोक्ता हम, जैसे गीता में भगवान वर्णन करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपनी निजी योजनाओं को त्याग कर भगवान श्री हरि का पूर्णतया शरण लिया है, उसे अकिंचन या निष्किंचन कहते हैं। तो केवल ऐसा व्यक्ति निस्सहाय भाव से भगवान के शरण में आ सकता है। जिसके हृदय में घमंड है, वो भगवान के पास नहीं आ सकता, या भगवान के पास आया भी तो उन्हें हृदय से पुकार नहीं सकता है। तो इंद्रदेव आखिर कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं, और कोई छोटे मोटे राजा भी नहीं है, वो तो देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग लोक के राजा हैं, कि ये कोई छोटा पद नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की तुलना में इंद्रदेव तो एक छोटे से कीड़े के बराबर है। जैसे मानो एक जुगनू सूरज को अपना प्रकाश दिखा रही हो, या कोई व्यक्ति
एक मोमबत्ती जलाकर वो प्रतियोगिता करने जाए सूर्य के साथ में, क्योंकि इंद्रदेव तो एक जीव हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर एक में एक एक इंद्र है, तो इंद्रदेव का क्या स्थान है और भगवान का क्या स्थान है। परंतु घमंड, ये नशा, ये ऐसी वस्तु है कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। और इंद्रदेव हालांकि वो एक भक्त हैं, फिर भी वो इस बात को भूल गए, अपने भगवान को पहचान नहीं पाए, सोचा कि ये तो छोटा बच्चा है। और फिर इंद्रदेव ने क्रोधित होकर सामवर्तक बादलों को पुकारा, सामवर्तक इधर आओ। सामवर्तक वो बादल होते हैं जो ब्रह्मांड के संहार के समय काम करते हैं। जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के समय इतनी भीषण वर्षा की आवश्यकता होती है कि जो हमारे साधारण जो वर्षा के समय बादल आते हैं वो कुछ काम के नहीं रह जाते, इसलिए विशेष बादल की आवश्यकता है जिनको सामवर्तक कहते हैं। तो इंद्रदेव ने सामवर्तक बादलों को उनके बंधनों से मुक्त कर दिया। कांपते हुए सामवर्तक बादल उनके सामने आए कि अब क्या चाहिए, अगर वृंदावन भेजेंगे तो कृष्ण का दंड हमें मिलेगा। तो उस समय इंद्रदेव ने कहा, अहो श्री मदमहात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्णम मत्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देव हेलनम। अहो, अरे देखो तो, श्री मद महात्म्यान, श्री मतलब ऐश्वर्य, मद मतलब उन्मत्त हो गए, नशा चढ़ गया है। महात्म्यान, कितना बड़ा नशा चढ़ गया उनको, किनको, गोपानाम, ये जो गोपगण हैं, कहां के, कानन औकसाम मतलब वन में रहने वाले ब्रजवासियों को। तो इंद्रदेव सामवर्तक बादलों से कहने लगे, अरे देखो तो, ये वृंदावन के निवासियों को अपने ऐश्वर्य का कितना घमंड हो गया है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, एक साधारण बालक मनुष्य कृष्ण, इसका आश्रय उन्होंने लिया है। ये चक्र देव हेलनम, और हम देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं, ये देखो इनकी मजाल। अभी जाओ वहां जाकर ऐसे भीषण वर्षा करना कि उनको कई जन्मों की नानी याद आ जाए। ये इंद्र ने नहीं कहा, हम कह रहे हैं, मतलब इंद्र केवल ये कहना चाहते थे कि भीषण वर्षा वहां वृंदावन में होनी चाहिए। और इंद्रदेव कहने लगे कृष्ण के बारे में, वाचालम बालशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। कृष्ण को, कृष्ण की निंदा करने लगे, कहने लगे कि देखो ये ग्वाल बाल जो हैं, इन्होंने कृष्ण का शरण लिया है जो कि एक साधारण मनुष्य है मर्त्यम, और इस प्रकार से मेरे प्रति उन्होंने अपराध किया है अप्रियम। और ये है कौन, ये कृष्ण वाचालम, बड़बड़िया बच्चा है, ये बहुत ज्यादा बकबक करता है, वाचालम जरूरत से ज्यादा बात करने वाला ये छोटा बच्चा है, बालिशम और है छोटा सा बच्चा, लेकिन देखो इसकी औकात, किस प्रकार से उसने ब्रजवासियों को भ्रमित कर दिया है, गलत मार्ग पे ले गया है। स्तब्धम, बड़ा घमंडी है ये बच्चा, बहुत घमंड इसके हृदय में है। अज्ञम, और बिल्कुल मूर्ख है, कोई ज्ञान नहीं है उसको, उसे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, मैं इंद्र हूं। पंडित मानिनम, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, और ऐसे साधारण मनुष्य कृष्ण के शरण में ये सारे गोपगण गए हैं, और ये बच्चे ने उनको बहकाकर मेरे यज्ञ जो है वो बंद कर दिया है। तो देखिए कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया इंद्रदेव ने अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति, जिनको वो पहचान नहीं पाए। जब ये कठोर वचन सुने तो सरस्वती देवी, उन्होंने सोचा कि अरे रे रे रे, ये इंद्र को शोभा नहीं देता, इंद्र तो देवराज हैं, भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे कठोर वचन बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो सरस्वती देवी ने क्या किया कि इंद्र के जो भी कठोर वचन थे उनको लेकर उनको एक ऐसे अच्छा मतलब दिया, भक्ति भाव से एक भक्ति के अनुकूल मतलब उसको अर्थ करके कृष्ण के चरण कमलों में उसे अर्पित किया। तो सरस्वती देवी कहने लगे कि जब इंद्रदेव कृष्ण को बालिशम कह रहे हैं, बालक, इसका मतलब है कि वो इतना मासूम है, इतना शुद्ध है जैसे छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे की मासूमियत में कोई दोष नहीं होता। छोटे बच्चे जो होते हैं कोई भी कार्य करते हैं वो हृदय से शुद्ध होते हैं, इसलिए कोई उनके कार्यों में दोष नहीं देखता। तो सरस्वती की प्रशंसा की है और ये कहा है कि इंद्र देख भगवान कृष्ण कितने शुद्ध हैं। स्तब्धम, स्तब्धम इंद्रदेव कहना चाहते थे कि कृष्ण कितना घमंडी है, लेकिन सरस्वती देवी ने इसका इसकी टिप्पणी की कि वास्तव में कृष्ण भगवान इतने महान हैं कि उनको दूसरों के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञम, अज्ञम मतलब इंद्रदेव सोचते थे, बोल रहे थे कि ये अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन सरस्वती देवी ने उसको दूसरा अर्थ दिया और कहने लगे कि ऐसे सारे ब्रह्मांड में उनके लिए जानने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। पंडित मानिनम, इंद्रदेव ने कहा कि ये कृष्ण अपने आप को पंडित मानता है, लेकिन सरस्वती देवी ने उसको उल्टा अर्थ दिया। कैसा अर्थ दिया कि जो बड़े बड़े पंडित हैं वो कृष्ण को बहुत मानते हैं, पंडित मानिनम। और इस प्रकार से सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के कठोर वचनों को बदल के उसे भक्ति भाव में स्वीकार करके कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। तो उधर सामवर्तक जो बादल हैं तेजी से वृंदावन की ओर निकल आए और उनके पीछे पीछे पवन आए और इंद्रदेव स्वयं अपने हाथी, अपने वाहन ऐरावत पे ऊपर बैठकर वहां पर अपना वज्र हाथ में धारण किए हुए पीछे आए। और उस समय अचानक सारे वृंदावन में मूसलधार वर्षा होने लगी, ऐसी वर्षा जो कि केवल प्रलय के समय होता है। आज तक ब्रजवासियों ने ऐसी वर्षा का अनुभव कभी भी नहीं किया था और वर्षा ऐसे गिर रही थी कि मानो पानी के खंभे गिरते जा रहे हैं, केवल पानी के बूंद नहीं और साथ साथ में बर्फ के टुकड़े, और इतनी शीतल ठंडी हवा बह रही थी और सब जगह पानी का बाढ़ होने लगा। इतना पानी भर गया कि क्या पहाड़ है और क्या जमीन नीचे की है वो समझ में नहीं आता था, सब जगह जल ही जल। और गाय बैल, गाय के बछड़े, ब्रजवासी पुरुष स्त्री बच्चे पशु सब इधर उधर भाग रहे थे। वैसे जब गर्ग ऋषि भगवान कृष्ण के नामकरण के समय आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी नंद महाराज को, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यथा, ये जो बच्चा है आपको सारे कठिनाइयों से मुक्त कर देगा, सर्व दुर्गाणि जो भी कष्ट आपके जीवन में आएंगे इनको मिटाने वाला ये बच्चा होगा। तो जब भी कोई कष्ट होता था तो ब्रजवासी तुरंत श्री कृष्ण के पास दौड़कर आ जाते थे और उस समय भी सारे ब्रजवासी उन्हें त्राही त्राही मचाकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वान्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। सारे ब्रजवासी अपने गायों को बछड़ों को लेकर कृष्ण के पास आए, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभागा, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप जो कि गोकुल के प्रभु हैं, हमने आपका शरण लिया है, इसलिए आप हमें बचाइए। त्रातुम अर्हसि, हमारी रक्षा कीजिए। कुपितात् देवान् कुपितात्, देव मतलब इंद्रदेव, कुपितात् बड़े कुपित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, तो इंद्रदेव के क्रोध से हमें बचाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये शायद इंद्रदेव की हरकत लगती है, क्योंकि हमने इंद्रदेव का यज्ञ बंद कर दिया तो उन्होंने वृंदावन के निवासियों को हैरान करने का ये तरकीब सोची है। वैसे ये बेचारे ब्रजवासी पूरी तरह से मुझ पर आश्रित हैं, मुझे उनका प्रभु मानते हैं, मेरे अलावा कुछ ये जानते ही नहीं हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सुरक्षा करूं, और साथ साथ में देवराज इंद्र है तो मेरा सेवक, लेकिन घमंड की वजह से वो भूल चुका है, और वो इतना उन्मत्त हो गया है उसके घमंड की वजह से, उसका घमंड जो है पर्वत के समान हो गया है, और इंद्रदेव के पर्वत रूपी घमंड का चूर चूर करना ये मैं, मेरी कृपा उसके ऊपर होगी। तो जब कृष्ण ने भगवान ने ये ठान लिया तो कहने लगे, हे वृंदावन के निवासी, कोई चिंता नहीं करना, मैं आपकी सुरक्षा कर लूंगा। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत की ओर तेजी से भाग गए, और फिर उन्होंने एक आश्चर्य का कार्य किया, अपने बायों हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाया और उठाकर अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और सारे वृंदावन के निवासियों को जोर जोर से घोषणा करते हुए कहने लगे, हे वृंदावन के निवासी, आप आइए, अपने गवों को पशुओं को साथ में लेकर आइए, यहां पर गोवर्धन के नीचे आश्रय लीजिए। सारे वृंदावन के निवासी वहां पर आए, आश्चर्यचकित हो गए, ये बाल कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत धारण किया है, और सभी लोग अंदर आए वहां पर, और आकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभंग ललित रूप में केवल अपने छोटे उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए हसमुख चेहरे से तिरछी नजर से देखते जा रहे थे। बोलो गिरिधारी लाल की जय, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो उस समय सारे वृंदावन के निवासी उधर आके गोवर्धन के नीचे आश्रय ग्रहण करने लगे, और लगातार 7 दिन और 7 रात ब्रजवासी खड़े रहे, कोई बैठे भी नहीं, और उस समय कृष्ण भगवान भी खड़े थे, कृष्ण भगवान भी बैठे नहीं, और सारे वृंदावन के निवासी बैठ गए। उधर गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य शक्ति प्रदान कर दी थी। इंद्रदेव सोच रहे थे, मैं इतना पानी बरसा रहा हूं, लेकिन पानी जैसे ही जमीन को छू रहा है सूख कर ऊपर हो रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपनी चमत्कार दिखाई। कृष्ण भगवान के लिए यह कोई कठिन बात नहीं है, एक छोटे से इंद्रदेव को जो संवर्तक बादल से पानी बरसाता है उस पानी को सुखा देना भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन बात नहीं है, आसानी से भगवान ने कर दिया। यूं खड़े थे और अपने केवल शक्तियों से सारे जल को सुखा दिया, और इंद्र ने देखा कि मैं जोर जोर से पानी बरसा रहा हूं, पानी सूखते जा रहा है, इंद्रदेव और जोर से पानी बरसाने लगे, और उतने ही जल्दी पानी सूखता गया, और फिर इंद्र ने अपने वज्र अस्त्र को फेंके गोवर्धन पर्वत के ऊपर, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दिव्य शक्ति प्रदान की थी, इसलिए गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव का वज्र फूलों की माला के बराबर लगा। गोवर्धन को लगा कि इंद्रदेव मुझे फूल अर्पण कर रहे हैं, और गोवर्धन के ऊपर जो हिरण और जो अन्य पशु थे वो गोवर्धन के ऊपर नीचे आराम से आते जा रहे थे, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, और भगवान का सुदर्शन चक्र जूम जूम घूम रहा था सब जगह गोवर्धन के इर्द गिर्द, और गोवर्धन के नीचे बिल्कुल एक रम्य वातावरण था, ज्यादा ठंड भी नहीं थी, ज्यादा और गर्मी भी नहीं थी, और वहां पर सारे ब्रजवासी केवल कृष्ण की ओर देखते रह गए। उनको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, थकावट नहीं हुई, नींद नहीं आई, केवल कृष्ण के सुंदर मुखारविंद की ओर देखते रह गए, अपने आंखों को कृष्ण से हटा नहीं पाए। जैसे चकोर केवल मुंह खोलकर चांद की ओर देखते रहता है, तो उसी प्रकार से ब्रजवासी श्री कृष्ण की ओर देखते रह गए और श्री कृष्ण जो है सारे ब्रजवासियों के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बरसाते रहे। हसमुख चेहरे से इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे पहली बार 1965 में, तो वहां जो पहले पहले उनके शिष्य हुए वो नव युवतियां और नव युवक वहां के थे, जिनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, गीता क्या है, भागवत क्या है, कुछ नहीं जानते थे। शुरुआत से प्रभुपाद जी को उनको ये सब सिखाना पड़ा। और एक बार उनकी एक शिष्या आई, एक नव युवती आई जो उनकी शिष्या बनना चाहती थी, और वो एक कलाकार थी, उनको बहुत अच्छे चित्रकार थी, वो बहुत अच्छे चित्र बनाना उनको आता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम गिरधारी का पिक्चर क्यों नहीं बनाते? भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, ये सुंदर चित्र बनाना। तो इस नव युवती ने कभी भी कृष्ण के बारे में ज्यादा सुना नहीं था, तो केवल प्रभुपाद जी ने वर्णन किया था कि देखो कृष्ण सांवले रंग के हैं, वैजयंती माला पहनते हैं, काले घुंघराले बाल हैं, मोर पंख है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स है, कौस्तुभ है। तो इस युवती ने ये सब कर दिया अच्छा तस्वीर, लेकिन सोचा कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, पर्वत तो इतना बड़ा होता है और हम लोग जब एक छोटे से पत्थर को भी उठाते हैं तो इतनी ताकत लगानी पड़ती है, और ये कृष्ण ने इतना बड़ा पहाड़ धारण किया तो जरूर बहुत शक्तिशाली होंगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान की तस्वीर जब की तो एकदम तगड़े मजबूत कृष्ण को बनाया, जैसे कोई पहलवान हो कुश्ती करने वाला, केवल कुश्ती के अखाड़े से जो व्यक्ति सामने आता है वैसे व्यक्ति को बनाया। और प्रभुपाद ने जब देखा तो हंसने लगे, बोले कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण तो बड़े नाजुक कोमल एक 15 साल के बालक के बराबर है, नव किशोर है वो। जब श्री कृष्ण छोटे बाल रूप में भी रहते हैं तो उनकी शक्ति उतनी ही होती है, और जब वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर थे उनकी शक्ति भी उतनी ही थी। भगवान श्री कृष्ण के शक्ति में कोई घटन नहीं होता है, अनेक अवतारों में भगवान आते हैं, अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति असीमित की असीमित ही रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दिखने में बड़े कोमल नाजुक एक छोटे बालक से हैं। और याद रखिए कि गोवर्धन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु केवल 7 वर्ष की थी, वो तो कोई पहलवान अखाड़े के नहीं थे, कुश्ती करते थे तो केवल जंगल में अपने मित्रों के साथ में, लेकिन कोई पहलवानों के साथ तो नहीं करते थे। आगे चलकर जब मथुरा में गए तब चाणूर मुष्टिक इत्यादि ऐसे पहलवानों से उन्होंने युद्ध किया, मुक्का प्रहार किया, कुश्ती की। तो खैर भगवान श्री कृष्ण केवल आराम से खड़े थे हसमुख चेहरे से और सबके ऊपर देखते रह गए थे। आचार्य बताते हैं कि बीच बीच में कभी कभी जो गोपगण थे उनको संशय आ गया कि अरे ये इतना बड़ा पहाड़ हमारे सर के ऊपर और केवल अकेला ये कृष्ण, हमारा बच्चा कृष्ण ये सारे पहाड़ को धारण कर लिया है, अगर कृष्ण कमजोर हो गए, थक गए, पहाड़ गिर गया तो हमारा क्या होगा। तो फिर गोपगणों ने एक दूसरे की ओर देखा और गोपन के पास जो छड़ी थी, लाठी, वो लाठी से ऊपर करके पकड़ लिया ताकि गोवर्धन ऊपर मजबूत रहे। तो गोपों ने एक दूसरे की ओर देखा और सारे गोपों ने अपने अपनी लाठी लगाकर गोवर्धन के ऊपर ऐसे स्पर्श किया और सारे गोपों के मन में विचार आया कि चलो हम लाठी ले रहे हैं इसलिए गोवर्धन अभी ऊपर है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा थोड़ी मस्ती करते हैं, तो कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा गोवर्धन को हिला दिया, यूं अपने नाखून के ऊपर था गोवर्धन तो थोड़ा सा बका दिया उसको, और जैसे बग गया तो गोपगण एक तरफ, उनकी लाठी दूसरी तरफ, उनकी पगड़ी तीसरी तरफ, और फिर सबको पता चल गया कि ये गोवर्धन धारण केवल ये बच्चा कृष्ण कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से केवल चकोर की तरह कृष्ण की ओर देखते रह गए। और आश्चर्य की बात ये कि किसी को भूख, प्यास, थकावट, नींद कुछ नहीं आई, केवल मानो ऐसे कि कृष्ण का सौंदर्य अमृत के एक नदी के बराबर था, और अपने आंखों से ये कृष्ण के सौंदर्य के अमृत का पान कर रहे थे सारे ब्रजवासी। जितना कृष्ण का दर्शन करते उतना और दर्शन करने की इच्छा हो जाती, ये है भक्ति। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए संसार का सौंदर्य उनके सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है। तो संसार के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने के बजाय हमने श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्रदेव जब अपने पूरी ताकत लगाते जा रहे थे, वज्र फेंकते जा रहे थे, अस्त्र के ऊपर अस्त्र फेंके जा रहे थे, समर तक बादल भी खाली होते जा रहे थे और जल बाकी नहीं रहा उनको उनके अंदर, तब इंद्रदेव सोचने लगे कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां तो सारे मथुरा मंडल में कोई बाढ़ नहीं, जितनी वर्षा मैंने अब तक बरसाई है वृंदावन के ऊपर, साधारणतः एक प्रलय हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रलय की बात तो दूर है, लेकिन गोवर्धन के आसपास जो भी जमीन है सूखा है, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं नजर आ रहा है, केवल यमुना जी बहती जा रही है। तो इंद्रदेव को समझ में आया कि ये वास्तव में वही मेरे आराध्य देव भगवान हैं, और फिर अपने आप को कोसने लग गए इंद्र कि हाय मैं कितना मूर्ख था, मैंने क्या कितनी बड़ी गलती की, कितना बड़ा अपराध मैंने किया भगवान के चरणों के प्रति। तो इंद्रदेव को बड़ा डर भी लगने लगा, कभी इसका परिणाम क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। उस समय इंद्रदेव बड़े दुख में थे, चिंता में थे, जैसे कि आजकल की भाषा में कहते हैं बड़े टेंशन में थे कि क्या किया जाए। उस समय ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, ब्रह्मा जी ने उनको आइडिया दिया, देखो जाओ कृष्ण को शांत करना है तो सुरभि गाय को लेकर जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण गोपाल हैं, गायों से बहुत प्रेम करते हैं, तो गाय को, गो माता को आगे रखो, जब भगवान गो माता को देखेंगे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर तुम पीछे पीछे जाकर फिर सामने आना। तो इंद्रदेव ने सुरभि देवी से प्रार्थना की कि हे सुरभि देवी मेरी सुरक्षा कीजिए। तो सुरभि देवी को बड़ा आनंद आया, क्योंकि उनको कृष्ण का दर्शन करने का मौका मिल रहा था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक वृंदावन, ये आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ लोकों में से प्रमुख जो लोक है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। गोलोक गायों का लोक, इसका मतलब है कि गाय श्री कृष्ण के लीला में कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं। तो यहां इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर भी एक भौतिक गोलोक है जो स्वर्गलोक में है, और वहां पर ऐसे सुरभि गाय रहते हैं जो बहुत सारा दूध दे सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। यहां पर 2, 4, 10, 15 लीटर देते हैं गाय, से ज्यादा नहीं, लेकिन वहां पर जो गाय है सुरभि गाय जितना चाहे उतना दूध दे सकते हैं, शुद्ध स्वादिष्ट दूध। जहां तक हमें मालूम है स्वर्गलोक जो गोलोक है उसमें कोई भैंस नहीं है, केवल गाय होते हैं, गो माता। भैंस को कभी माता पिता नहीं कहा गया है, लेकिन गाय को माता कहा गया है, बैल को पिता कहा गया है हमारी संस्कृति में। तो इस प्रकार से सुरभि गाय भी आई कृष्ण के सामने। उधर कृष्ण एक वृंदावन के जगह में वहां थे, क्योंकि 7 दिन बीत चुके थे और उसके बाद 3 दिन बीत चुके, अर्थात 10वें दिन पर इंद्रदेव वहां पर आए, और आकर सीधा उन्होंने प्रणाम किया श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण से वो कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं अति मूर्ख आपके सामने उपस्थित हूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा अपराध हो गया कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे आपसे क्षमा मांगूं। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं आपके सामने आने के लिए। आप तो दिव्य हैं, आपका दिव्य शरीर सच्चिदानंद है, आपको इन तीन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये तीन गुण आपके अधीन हैं। लेकिन मेरे अंदर इतना घमंड आ गया, इतना अज्ञान आ गया कि मैं अपने आप को भगवान मानने लगा। केवल मैं भूल गया कि मेरी जो भी थोड़ी बहुत शक्ति है वो केवल आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाया मेरे नशे की अवस्था में। कृपा कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए और मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से इंद्रदेव क्षमा याचना करने लगे और भगवान कृष्ण की स्तुति भी करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण हालांकि 7 वर्ष के बालक के रूप में थे, फिर वो जवाब देने लगे और उनकी जो आवाज थी बादलों के गरजने की तरह गंभीर आवाज थी। मतलब शरीर दिखाई पड़ रहा था 7 साल के बालक का, लेकिन इंद्रदेव जब आए तो देवराज के सामने कैसे जब उनको दंड देना चाहिए तो कैसे बोलना चाहिए, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण उसी ही आवाज में बोलने लगे, बड़े गंभीर आवाज में, बादलों की तरह गड़गड़ाते हुए उनके आवाज में बोलने लगे कि हे इंद्र, मुझे मालूम था कि तुम्हारे हृदय में पहाड़ के समान अहंकार हो गया था और मैंने ये यज्ञ तुम्हारे प्रति जो किया जा रहा था उसे इसलिए बंद किया कि मुझे तुम्हारे अहंकार के पहाड़ को चूर चूर करके मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने की इच्छा थी। जो मूर्ख होते हैं, घमंडी होते हैं, वो मुझे दंड पाणी नहीं देखते हैं कि मेरे हाथों में दंड की छड़ी है और इसलिए इस दंड से मैं सभी को मैं दंड देता हूं। जो भी पाप करते हैं, जिनके हृदय में घमंड हो जाता है, उनको सीधा मैं कर देता हूं। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान इंद्र से कहा, अब कभी नहीं भूलना कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। हमेशा जान लेना कि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भक्त हो। और इंद्रदेव ने फिर से हाथ जोड़े, प्रणाम कर दिया और उस समय सुरभि गाय भी सामने आई और जो भी वहां पर गाय थे उनको अपने बच्चे समझकर और सुरभि देवी ने भी स्तुति अर्पण करना आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण के प्रति। सुरभि क्योंकि देवलोक की निवासी थी तो देवराज इंद्र को अपने राजा मानती थी, लेकिन अब सुरभि को पता चल गया कि अपने असली राजा कौन है, असली इंद्र कौन है। तो उन्होंने कृष्ण से कह दिया कि कृपया हमें अनुमति दीजिए आपका राज्याभिषेक करने के लिए, हम आपको इंद्र का पद देना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ठीक है। फिर उस समय सुरभि गाय ने अपने ही दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और फिर देवी देवताओं के कहने पर इंद्रदेव ने अपने हाथी ऐरावत के सूंड से सारे गंगाई का जल लेकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी किया और वहां राज्याभिषेक हुआ। सारे देवतागण वहां आए और सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक से वहां के निवासी आए, सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने लगे, वाद्य बजाने लगे, संगीत होने लगा, ब्राह्मण आकर वहां स्तुति करने लगे ऊपर के लोकों के। और इस प्रकार से इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद। गोविंद मतलब गावों को आनंद प्रदान करने वाले या इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक समाप्त हो गया और फिर सारे देवी देवताओं ने और खास करके इंद्रदेव और सुरभि देवी ने कृष्ण भगवान से अनुमति ले ली और वहां से वो वापस अपने धाम चले गए। और कृष्ण भगवान फिर साधारणतः जैसे पहले लीला कर रहे थे, एक साधारण गोप बाल की तरह इधर उधर घूमने लगे। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की सुंदर गोवर्धन की लीला। भगवान श्री कृष्ण का ही शायद सबसे प्रमुख लीला माना जाता है, सभी लोग जानते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण की निंदा करते हैं कि कृष्ण ने रास लीला की थी इतने गोपियों के साथ में, और कई लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण की रास लीला का नकल करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले उनको कृष्ण की तरह गोवर्धन उठाने दो, अगर वो गोवर्धन उठा पाएंगे तो फिर वो रासलीला कर सकते हैं, लेकिन भला कोई गोवर्धन को उठा सकता है? नहीं। तो इस प्रकार से गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त की। तो गोवर्धन का नाम ही ऐसे है, गोवर्धन, क्योंकि वैदिक संस्कृति में गाय और गो माता इनको बहुत महत्व दिया जाता है। गाय को माता कहते हैं, बैल को हमारे पिता कहते हैं, क्योंकि बैल खेतों में चलता है, खेतों से हमें अनाज मिलता है, अनाज से हमारा पालन पोषण होता है, वो पिता के समान है, पिता परिवार का पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, और माँ वो हमें दूध देती है, तो गो माता हमें दूध देती है, इसलिए वो हमारी माता होती है। तो गाय और बैल या गोवंश, इन दोनों के हमेशा हमें इनका आदर सत्कार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल समाज में क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर गो हत्या होती जा रही है, इसलिए हमें गो सेवा करनी चाहिए। आज थोड़ी देर में हम जाकर नीचे गो सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये सुंदर लीला समाप्त कर ली और अपने भक्तों को सिद्ध कर दिखाया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का आश्रय लेता है उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो इंद्रदेव भी क्यों ना हो। और भगवान श्री कृष्ण हमारी सुरक्षा हर अवस्था में अवश्य करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो ये श्री कृष्ण का संदेश है हम सबके लिए, इसलिए हमें सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। बोलो गिरधारी लाल की, गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन लीला की जय। तो अब कार्यक्रम इस प्रकार से होगा कि पर्दा खुलेगा और यहां आप गोवर्धन का दर्शन कर पाएंगे। गोवर्धन हमने दो बनाए हैं, एक तो गोबर का, और वृंदावन में जब गोवर्धन बनाया जाता है तो गोबर का, हर एक घर में आप देखेंगे गोबर का पर्वत बनाया जाता है, और बाजू में उसके इस तरफ चावल का पुलाव का पहाड़ बनाया है, वो भी दूसरा गोवर्धन है। और गोवर्धन को भोग बहुत सारे चढ़ाए गए हैं, अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन, कोई छोटे पहाड़, कोई बड़े पहाड़, और कई तालाब भी हैं, आप इन सब का दर्शन कर पाएंगे। तो अब गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा के बाद में गोवर्धन परिक्रमा आप सब कर पाएंगे, लेकिन परिक्रमा करने के लिए यहां मंदिर में जगह कम है और भक्तों की संख्या अधिक है, इसलिए अभी इस प्रकार से परिक्रमा की आयोजना की गई है। कृपया ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रभु जी परिक्रमा करेंगे, जैसे ही गोवर्धन की पूजा समाप्त हो जाती है सारे माताओं से निवेदन है कि आप कृपा करके नीचे जाइएगा, और यहां जो प्रभु जी होंगे आप यहां परिक्रमा कर पाएंगे। कृपया परिक्रमा करते समय एक दूसरे को धक्का नहीं दीजिएगा, शांति से अच्छे अच्छे लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे साइड साइड में होकर बड़े प्रेम से भक्ति भाव से कीर्तन में अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिएगा। और परिक्रमा लंबी चलेगी इस प्रकार से, क्योंकि सारे भक्तों को यहां पे अंदर अकोमोडेट करना है। और जब माताएं आप सब नीचे जाएंगे तो आप जो भी गाय बैल वहां पर है नीचे, आप उनको घास खिला सकते हैं। तो वहां आपको लाइन बनाने होंगे और वहां 8-10 लाइन बनेंगे, आप उस लाइन में जाइएगा, फिर गोमाता को या बैल को आप घास खिलाकर फिर आप यहां नीचे आइएगा। तब तक यहां सबका परिक्रमा हो जाएगा, फिर प्रभु जी सारे नीचे आ जाएंगे, वो गो सेवा करेंगे, गायों को घास खिलाएंगे, तब तक माता यहां आकर परिक्रमा करेंगे और उस समय आप यहां सारे प्रसाद का जो भी भोग गोवर्धन जी को अर्पण किया है उसका दर्शन आप कर पाएंगे। परिक्रमा करने के बाद, दर्शन करने के बाद जल्दी से कृपया आप नीचे आ जाइएगा और जब सब लोग नीचे आ जाएंगे तो हम गाय की पूजा करेंगे और गाय की पूजा समाप्त करने के बाद में गो क्रीड़ा का उत्सव मनाया जाएगा। ये सारे अनुष्ठान इस दिवस पर किए जाते हैं। गो क्रीड़ा मतलब गाय खेलकूद करेंगे, लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं है। अगर गाय की इच्छा हुई तो वो करेंगे, उनकी इच्छा नहीं हुई तो क्रीड़ा नहीं करेंगे। तो अगर आप सब प्रार्थना करेंगे गोमाता से तो हो सकता है गोमाता खुश होकर थोड़ी क्रीड़ा करेंगी वहां पे, नहीं तो केवल गोमाता का दर्शन करके हमें यहां आना होगा। वहां गायों को कैसा मूड है वो वही जाने, तो हमें जाकर केवल उनका दर्शन करना है, उनकी सेवा करना है। और गो क्रीड़ा के बाद में फिर प्रसाद का वितरण होगा। प्रसाद के लिए भी अच्छी तरह से कृपा करके लाइन बनाइएगा, धक्का मुक्की मत कीजिएगा, कृपया अच्छी तरह से भक्ति भाव से ग्रहण कीजिए। वैश्य